शुरू करते हैं तफसीर। अब आप ऊपर लिखिए तफसीर, आयत नंबर 6 से 13 तक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بيشك وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سواء عليهم برابر ہے ان کے أأنذرتهم چاہے آپ ڈرائیں ان کو ام لم تنذرهم یا لم نہیں تنذرهم آپ ان کو ڈرائیں لا يؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے دیکھا پچھلے سبق میں متقین کی نشانیاں اور وہ ہی لوگ ہیں جو کہ کامیابی پانے والے۔ اب وہ 5 آیتیں گزر گئیں متقین کے ذکر کے ساتھ، اب 2 آیتیں ہیں آیت نمبر 6 اور 7، یہ امپورٹنٹ بات ہے اس کو نوٹ کر لیجئے، 6 اور 7 آیت میں کفار کا ذکر آئے گا، پھر آیت 8 سے لے کے 20 تک آپ دیکھیں گے ذکر ہے منافقین کا، تو اگلی 13 آیتیں پھر منافقین پہ آئیں گی۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا، جب سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے اس چیز کو یاد کر لیں، پہلی 5 آیات کس کی ہیں؟ متقین کی، دوسری 2 آیات کس کی ہیں؟ کافروں کی، تیسری ایک اور کیٹیگری بتائی گئی، اگلی 13 آیات کس پر ہیں؟ منافقین پہ۔ یہ آپ کو بات یاد ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ آج ہم کافروں کی بات پڑھیں گے اور منافقین کی بات پڑھیں گے، مگر پوری نہیں، اس کو کمپلیٹ کریں گے، ہم ہاف دیکھیں گے آج، ٹھیک ہے؟ دنیا میں 3 ہی گروہ ہیں، یا تو کوئی متقی ہے یا کافر ہے یا منافق ہے، اس کے علاوہ چوتھا کوئی گروہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تینوں ہی ہیں جن میں ہم کہیں بھی کھڑے ہوں گے، یا کوئی بھی انسان انہی تینوں میں سے کہیں نہ کہیں موجود ہے، اس لیے ان گروہوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں برابر ہیں ان کے لیے، اندرتا ہوں ڈراؤ تم ان کو، تم کس کی طرف ہے بات جا رہی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہا جا رہا ہے، اے نبی آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کو فرق نہیں پڑے گا، انہوں نے ایمان نہیں لے کر آنا۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت رنج کیا کرتے تھے، بڑا دل پہ لیتے تھے اس چیز کو، یہ کیوں نہیں مان رہے؟ حق ان کے سامنے آ گیا ہے، کتاب صحیح ان کے سامنے ہے، ان کو پہچان بھی ہو گئی ہے، پھر بھی نہیں یہ مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہٹ دھرم ہوتے ہیں، دیکھیں جو حق دیکھ کے اس کے بعد بھی ضد نہ چھوڑے اور تکبر کے اندر رہے کہ نہیں جو میں کہتا ہوں وہی ٹھیک ہے، میں نے ماننا ہی نہیں ہے، جو کہے میں نہ مانوں اس کو آپ کیسے منوا سکتے ہیں؟ نہیں منوا سکتے نا۔ اب دنیا میں دیکھیں کئی لوگ ہیں، آپ سر نیچے پیر اوپر بھی کر لیں، وہ جس ڈگر پہ ہیں اور جو انہوں نے کہہ دیا نا، وہ کہتے ہیں بس یہی حرف آخر ہے، اس کے علاوہ ہم نے کوئی بات مان کے ہی نہیں دینی، تو ان کا آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کو یہ پیالہ بھرنا چاہے پانی سے اور آپ اس کو اوندھے منہ رکھ دیں، الٹا کر کے رکھ دیں اس کو پانی کے نیچے اور اوپر سے پانی کھول دیں اور سوچیں کہ یہ پانی سے بھر جائے گا، تو بھرے گا کبھی؟ کیا نہیں بھرے گا نا، کیوں نہیں بھرے گا، پیالہ ہی الٹا ہے، سیدھا کریں گے تو اس میں پانی جائے گا، گلاس ہی آپ نے الٹا رکھا ہوا، کیسے بھر سکتا ہے وہ؟ اسی طرح کئی لوگ اپنے دل بھی اس طرح سے الٹے کر لیتے ہیں، بند کر لیتے ہیں، جب ان میں بات ہی نہ جائے تو پھر کیسے ہدایت ملے گی؟ تو اس زمانے میں بھی بعض لوگ ایسے تھے جیسے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، یہ وہ لوگ تھے جن کو پتا تھا کہ یہ حق ہے، لیکن وہ کہتے تھے ہم نے نہیں ماننا۔ اور رہتی دنیا تک ایسے لوگ ہیں جن کو بس اپنی رائے، اپنی بات اور ہٹ دھرمی کہ بس میں نے اپنی ضد نہیں چھوڑنی، اس پہ رہتے ہیں، پھر ان کو کوئی منوا تھوڑی سکتا ہے۔ تو اس سے مراد تمام کافر نہیں ہے کہ جتنے بھی کافر ہیں ان کے لیے برابر ہے، آپ ان کو بتائیں یا نہ بتائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ ایمان لائیں گے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ इससे मुराद वो सरकश जिद्दी लोग हैं। और मैंने आपको बताया वजह क्या यहाँ पे ये चीज लाने की है कि आप गम ना करें, आपका कसूर नहीं है, आपके बताने में कोई कमी नहीं है नबी, आप क्यों अपने आप को घुला रहे हैं इनके पीछे, असल इनका कसूर है। इनको जब किसी ने एक रविश पकड़ लिया ना, मैंने नहीं मानना, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। और क्या इनकी वजह है, आगे एक बात भी है, खत्म अल्लाह, मोहर लगा दी अल्लाह ने, अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर, व अला समईहिम और उनके कानों पर, व अला अबसारिहिम और उनकी आंखों पर गिशावा है, पर्दा है। अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है, ये आप तो मानेंगे ही नहीं, इनके दिलों पर भी, इनके कानों पर भी, और इनकी आंखों पे पर्दा डाल दिया। आंखों पे मोहर नहीं लगती, आंखों के आगे पर्दा आ जाता है, कहते ना कि इसकी तो बस आंखों के आगे पर्दा पड़ गया, बोलते भी हैं हम कई दफा अपने आम लैंग्वेज में। तो अब हम कहें ओहो इनका क्या कसूर है, अल्लाह ने तो इनके दिलों पे खुद ही मोहर लगा दी, तो आप ये नहीं मानते तो इसमें इनकी क्या फॉल्ट है। बात है ये है, अल्लाह ताला ऐसे ही किसी के दिल पे मोहर नहीं लगा देता, मोहर लगाने की एक वजह होती है। देखिए ये अल्लाह ताला ने हमें आज़ाद दी है ना, आंखें दी हैं, कान दी हैं, अकल दी है, समझ दी है, ये इसलिए दी है कि हम इनके जरिए दुनिया में अल्लाह की बिखरी हुई निशानियों को देखें, सुने बातें और समझें और अल्लाह ताला को पहचान लें इसके जरिए। मिसाल के तौर पे आप बादल देखते हैं, आप बारिश देखते हैं, आप दरख्त देखते हैं, चरिंद परिंद देखते हैं, आप देख रहे हैं ना, इससे अब क्या हासिल होना चाहिए, इंसान अपनी अकल समझ को इस्तेमाल करते हुए फिर ये सोचे, इस कंक्लूजन तक, इस बात तक, इस नतीजे तक पहुंचे कि इनका खालिक कोई है और वो एक ही है। जब इंसान ये नहीं करता, जो इन आज़ा का मकसद था कि इनके जरिए अल्लाह को पहचानो, जब सारी दुनिया देख ली और देखी कैसे, हाँ बड़ा खूबसूरत सीन है, बड़े प्यारे बादल हैं, बड़ी अच्छी बारिश बरसी, बड़े खूबसूरत दरख्त हैं, जब ये कहते रहे ये भी खूबसूरत, वो भी अच्छा, वो भी अच्छा, लेकिन कभी भी इनके पीछे, इनके बनाने वाले को, इनके खालिक, इनके मालिक, इनके कायम रखने वाले को, इनको हसीन बनाने वाले को, इनके सस्टेनर को कभी भी नहीं पहचाना कि कोई तो है जिसने बनाया। जब इन कुव्वतों से, जो आपको अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं ना, जब इनको इंसान, इनसे ये फायदा ही नहीं उठाता जिस चीज के लिए अल्लाह ताला ने उसको ये सलाहियतें दी हैं, तो एक दिन वो भी आता है कि ये सलाहियतें शाल हो जाती हैं। कैसे, जैसे मसलन आप देखें, कभी बीमार कोई होता है ना, और वो मसलन उसका बाजू है, उसके बाजू में कोई तकलीफ हो गई, अब वो बाजू हिलाता ही नहीं, हिलाता ही नहीं है, कोई साल गुजर गया तो उसके बाद क्या होगा, वो बाजू हिलाना चाहेगा, हिलेगा क्या, नहीं, फ्रीज हो जाएगा वहीं। इसीलिए तो कोई चीज भी होती है, वो फिजियोथेरेपी क्यों कराते हैं कि आपके ये अज़ा चलते रहें, आपको उठाते हैं बिठाते हैं, कितने भी मरीज हों, फिर वरना तो वो उनकी बॉडी वैसे ही स्टिफ हो जाएगी, वो चल फिर ही नहीं सकेंगे। तो जिस उज्व को आप काम में नहीं लेकर आए, वो अपनी सलाहियत खो देता है। इसी तरह जब इंसान ना अकल इस्तेमाल करता है, ना फिर कोई दिल से कुछ सोचता है, ना कोई गौर व फिक्र करता है, ना इन आंखों कानों को दुनिया जहान की चीजों में लगाया हुआ है, पढ़ाइयां भी इनसे हो रही हैं, दुनिया के कामकाज भी हो रहे हैं, जॉबें भी हो रही हैं, बिजनेस भी हो रहे हैं, हर चीज हो रही है, वो सैरों पे भी जा रहे हैं, हसीन मनाजिर भी देख रहे हैं, वेकेशंस पे जाके खूबसूरत चीजों को देख के उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लेकिन उस उनके पीछे बनाने वाले को ही नहीं समझते, तो आहिस्ता आहिस्ता ये सलाहियत सल्ब हो जाती है, फिर अल्लाह ले लेता है वापस। हक को देखा, फिर कोई सुनाने वाला भी आया, कोई बताने वाला भी आया, किसी ने समझाया और समझ भी आ गई, लेकिन फिर भी नहीं मान के देना, और कायनात भी गवाही दे रही है, फिर भी हठधर्मी पे रहना, तो अल्लाह ताला फिर मोहर लगा देता है। खत्मा क्या है कि सील कर दिया, अब इस दिल में कुछ दाखिल ही नहीं होगा। समात के पे सील करना क्या है, ये नहीं कि वो बहरा हो जाता है। बड़े बड़े जालिम अबू जहल बहरा नहीं हुआ, फिरौन बहरा नहीं हुआ, ये क्या बात हुई। वो सुनते तो हैं लेकिन नहीं सुनते, वो देखते तो हैं लेकिन नहीं देखते। उनके दिल तो हैं लेकिन वो दिल सोचते नहीं है, समझते नहीं है। इसलिए कि अगर इन आज़ा से रब को ही ना पहचाना, जो मालिक है उसको ना पहचाना, तो फिर क्या पाया। देखिए जो जानवर है ना, जानवर ये भी मालिक की पहचान रखता है। आप कुत्ते जैसे जानवर को भी देखें, उसको मालिक की कितनी पहचान होती है। जब मालिक आता है तो दुम हिलाता है, जब मालिक आता है तो उसके आगे पीछे भागता है। मालिक कहीं लेके जा रहा है, अब उसके आगे पीछे हो रहा है, उसको यानी जिस तरह से उसको पसंद है उस तरह से कर रहा है। कितनी पहचान है मालिक की। वो किसी और के साथ नहीं वैसा करता जैसे अपने मालिक के साथ करता है। तो इंसान, तुझे तो अल्लाह ने अकल दी, समझ दी, सलाहियतें दी, तू ही अपने रब को ना पहचाना। जानवर को तो बहुत कम अकल है, बहुत कम समझ है, वो भी पहचान जाता है मालिक को, और तू ही ना पहचाना। तूने खाया भी पिया भी उसी का दिया हुआ, उसी की दी हुई सांस भी लेता है, उसी के दिए हुए से देखता भी है, सुनता भी है, समझ भी है, अकल भी है, लेकिन सब जगहों पे वो इस्तेमाल होती है सिवाय मालिक को पहचानने के। आपको मैंने बताया था ना, रब मालिक है, हम गुलाम है। गुलाम मालिक को पहचान ही ना पाया तो उसने उसको ओबे क्या करना। तो जब ऐसी हालत हो जाती है कि हक नजर भी आता है फिर भी बस नहीं मानना, नहीं मानना, नहीं मानना, जब एक ही रट लगाई हुई है तो ठीक है, फिर अल्लाह ताला भी मोहर लगा देता है, ठीक है नहीं मानना तो नहीं मानना। तो ये इंसानों के रवैये होते हैं जिनकी वजह से ये मोहर लगती है। ये अल्लाह नहीं किसी पे जुल्म करता, अल्लाह ताला नऊजु बिल्ला, उसका जुल्म तो ये फिर होता कि वो तो अकल ही ना देता, समझ ही ना देता, कोई रसूल ना भेजता, कोई किताब ना हमें बताने के लिए भेजता, कोई पैगाम ना आता किसी के पास भी, ये आंखें कान ये भी ना होते, ना कोई निशानियां होती जिनसे अल्लाह को पहचान सकते। और कयामत के दिन अल्लाह पूछता मरने के बाद कि ये क्यों किया, तो फिर कोई कह सकता था ये तो जुल्म है, हमें कौन सा किसी ने बताया था। लेकिन लोगों, तुम्हें जगाने के लिए, तुम्हें बताने के लिए तो अल्लाह ने बेशुमार इंतजाम किए। कोई नबी नहीं किसी के पास आया, तब भी इन बिखरी हुई निशानियों से अल्लाह को पहचान तो सकते हो ना, मालिक को तो पहचान सकते हो कि कोई खालिक है कि नहीं, कि इतनी भी अकल गई। लेकिन देखो इंसान को, वो कैसा गाफिल होता है और कैसा उसके अंदर तकब्बुर आ जाता है कि वो खुद ही अपना ही मालिक बन बैठता है, कि मैं ही खुदा हूं अपना, और अपने खुदा को भूल जाता है। ऐसे ही लोगों के लिए वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, बड़ा अज़ाब है, बड़ा अज़ाब। यानी अजीम जब आता है ना, जिसको अल्लाह कह दे कि ये अजीम है, बड़ा है, तो कितना बड़ा अजाब होगा। दुनिया के टॉर्चर्स होते हैं, वो इंसानों के दिए हुए टॉर्चर्स होते हैं, इंसानों के दिए हुए अजाब होते हैं, लेकिन टॉर्चर का लफ्ज सुन के ही ऐसे झुरझुरी सी आती है कि अच्छा फलां जगह टॉर्चर सेल है, फलां जगह टॉर्चर किया जाता है, तो कितना डर लगता है। वो इंसानों के दिए हुए बनाए हुए तरीके हैं टॉर्चर के, और वो ही कितने खौफनाक होते हैं। जब अल्लाह कह दे अजाब, तो जो उसका टॉर्चर होगा वो कितना बड़ा होगा, और जब वो कह दे अजाबुन अजीम, तो सोचें जिसको वो बड़ा अजाब कह दे, वो अजाब कितना बड़ा होगा। तो कुफर जो है ना, ये अजाब है, अजाब की एक शक्ल है। इंसान को आखरत में तो मिलेगा ही वो अजाब, लेकिन दुनिया में इस अजाब की शक्ल क्या है कि इंसान अपने रब से ही जुदा हो गया, वो अपने पालने वाले, अपने मेहरबान रब को ही छोड़ गया, उसकी पहचान ना कर पाया, इससे बड़ा क्या अजाब हो सकता है। ये हैं काफिर लोग, हक को रद्द कर देने वाले, हक को पहचानने के बावजूद ना मानने वाले, हक देखते हैं, हक को समझते हैं, कोई कमी नहीं है उनके सामने कि उनको किसी ने बताया नहीं, उनको किसी ने समझाया नहीं, और एक नहीं, दो नहीं, 100 करोड़ों दफा समझाया गया, और फिर लंबे अरसे तक समझाया गया, फिर भी वो नहीं मानना चाहते। ऐसे लोगों का ये अंजाम बता दिया गया। अब एक तीसरी कैटेगरी आ रही है मुनाफिकीन की। इनका नाम तो नहीं लेके कहा गया कि मुनाफिक हैं, लेकिन ये खसूसियात मुनाफिकों की हैं, इसलिए जब हम इनको पढ़ेंगे आप देखेंगे इतना लंबी इनके ऊपर बात की गई कि 13 आयात इनके बारे में। मुत्तकीन की हमने कितनी पढ़ी? 5 सिर्फ। काफरों की कितनी? 2 सिर्फ। इसलिए कि उनकी पहचान करनी है, किसी माशरे में देखना मुत्तकी कौन है, तो ये चीजें चेक कर लो, जिसमें ये है वो मुत्तकी है। काफरों की पहचान देखनी है तो काफिर ये है, ठीक है, उनकी भी पहचान पता चल जाती है। ना मानने वाले, इनकार करने वाले, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर तमाम काफिर शामिल नहीं कि आप उनके इंतजार ही ना करें, आप हम आराम से बैठ जाए, नहीं, आप तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया, अब तुम इनको डराओ कि ना डराओ, तो इन्होंने तो मानना ही नहीं, तो छोड़ो फिर, हमें क्या जरूरत है हम कोई दावा करें, दावे का काम नहीं करना, अब हमने किसी को तबलीग नहीं करनी, नहीं, ये तमाम के लिए नहीं है, ये उन हठ धर्म और ऐसे, मैंने आपको बताया ना, जिद्दी किस्म के जो हद से बढ़ जाए उनकी बात हो रही है, ठीक है। अब मुनाफिकीन का लंबा जिक्र क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जो पहले दो हैं वो साफ सामने जाहिर है, मुनाफिक का प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि वो साफ सामने आता भी नहीं और छुपता भी नहीं, यानी ना इधर है ना उधर है, अंदर कुछ बाहर कुछ। अब जो इस तरह की सिफत होती है ना उसको पहचानना जरा मुश्किल होता है, जैसे कोई चीज रंग बदलती हो, अभी आपने देखा कुछ है, अभी देखा कुछ है, कुछ है, तो फिर कितनी कंफ्यूजन हो जाएगी, एक चीज का एक ही रंग रहता है तो आपको पता है कि भाई हाँ ये सफेद है ये स्याह है, आप सर फर्क वाजी होता है आपके सामने, लेकिन मुनाफिकीन रंग बदलता है, उसकी दोगली पर्सनैलिटी होती है, डबल फेस्ड होता है, इसलिए पहचानना मुश्किल होता है। अच्छा अभी तो ये कुछ था तो अभी कुछ और हो गया, और फिर कोई तीसरे वक्त में कुछ और है, तो जाहिर है मुश्किल होगा ना। और चूंकि ये चीज अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए इनकी सिफात इतनी लंबी बताई गई ताकि हम इनको पहचाने, और लोगों में नहीं इनको पहचाने कि बोला अच्छा ये आज मैंने पढ़ लिया ना, यही लोग हैं मुनाफिक, नहीं, ये निशानियां इसलिए हैं ताकि हम इनके जरिए अपना जायजा लें कि हम में तो निफाक कहीं है नहीं, हम तो नहीं कहीं इन खसूसियात के हामिल हो गए, क्योंकि ये खतरनाक है बहुत, और इनका भी अंजाम अजाबुल अलीम है आप देखेंगे, तो हम नहीं चाहते कि हम में से कोई भी ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पे अजाबुल अलीम हो, तो बहुत जरूरी है कि हम लोग देखें ये जो सिफात यहाँ पे बताई गई है बेसिक सिफात, कहीं इस क्राइटेरिया पर मैं तो नहीं पूरी उतरती, ठीक है। हम देखते हैं कि सहाबा कराम, मैंने आपको पहले भी बताया था, हजरत उमर जैसे इतना डरते थे कि कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया, इतनी फिक्र उनको होती थी, मेरे अंदर तो नहीं मुनाफिकत, हजरत उनसे हुजैफा से, हजरत हुजैफा को मुनाफिकीन के नाम मालूम थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताए थे, सबके तो नहीं, जो तबूक में जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश की थी उन मुनाफिकीन के नाम बताए थे, तो हजरत उमर उनसे पूछते रहते थे कि कहीं उस लिस्ट में मैं तो शामिल नहीं हूं। इसी तरह हजरत हंजला है गसीलुल मलाइका, जिन्होंने सीरत पढ़ी थी उनको अगर याद हो तो, हजरत हंजला जो है वो कहा करते थे हंजला मुनाफिक हो गया, हंजला मुनाफिक हो गया, क्यों? क्योंकि कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके बताते हैं हम आपकी मजलिस में बैठते हैं, हम हमारा ईमान बहुत होता है, बहुत हम हमारे दिल ऐसे प्योर हो जाते हैं, जब हम अपने घरों में जाते हैं बाल बच्चों में जाते हैं तो जाहिर है ईमान की वो हालत तो नहीं रहती, तो इसलिए वो उन्होंने सोचा मैं तो मुनाफिक हो गया हूँ, यहाँ पे कुछ हूँ घर जाके कुछ और हूँ। तो आपने फरमाया नहीं ऐसी बात नहीं, ईमान का भी लेवल्स होते हैं, जाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में तो बहुत ईमान होगा, घर जाके उतना उस तरह से नहीं हो सकता। तो ये चीजें थी आपको बताने का मकसद, ये कि सहाबा को भी कितनी फिक्र थी कि हमारे अंदर निफाक तो नहीं है, हज़रत उमर अशरा मुबशरा में से उनको कितनी फिक्र है। तो ये ऐसी चीज है जिसकी वाकई फिक्र करनी चाहिए। कहा जाता है कि निफाक से अपने आप को पाक सिर्फ मुनाफिक ही समझता है, मोमिन तो हर वक्त डरता रहता है मेरे अंदर निफाक तो नहीं है। तो इसलिए इस इन सिफात को गौर से पढ़ना है, गौर से समझना है और देखना है कि ये कैसी सिफात हैं। अपने आप को सबसे पहले चेक करना है, अपना मुहासबा करने के लिए ये सिफात आपको हेल्प करेंगी कि हम अपनी चेकिंग कर लें। ये अल्लाह अगर हमारे अंदर निफाक की एक रमक भी है तो अल्लाह ताला इसको हमारे दिल से निकाल देना, अल्लाह हमारे दिलों को पाक साफ कर देना। ठीक है, तो अब हम मुनाफिकीन की बात पढ़ने जा रहे हैं जो वीक कैरेक्टर के लोग हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया वा मिनन नासी, लोगों में से मन यकूलू, जो कहता है, लोगों में से कोई ऐसा है जो कहता है, क्या कहता है, आमन्ना बिल्ला, हम ईमान लाए अल्लाह पर, वा बिल यौमिल आखिर, और आखरत के दिन पर, वा मा हुम बी मुमिनीन, हालांकि वो ईमान लाने वाले नहीं है। आप सबसे पहली बात देखें यहाँ पे, इन अल्लदीन कफरू, पिछली आयत में कहा गया, यहाँ पे ये नहीं कहा गया इन अल्लदीन नाफकू, हाँ यहाँ पे कहा गया वह मीन अन्नास, लोगों में से कोई ऐसे, क्या पता चला इससे। अल्लाह ताला ने तो खुद भी पॉइंट आउट करके ऐसे नहीं कहा, वो निफाक वाले लोग, ये ऐसे लोग क्यों, इसलिए कि अल्लाह उनको चांस देना चाहता है कि तुम पलट आओ। ठीक है, और अल्लाह ताला उनके लिए तौबा का दरवाजा खुला रखता है जब तक वो जिंदा है। तो अल्लाह ताला ने उनको ऐसे नहीं कहा बस लोगों में से कोई है। वो पता है नहीं, मुनाफिकीन का मामला तो यानी एग्जैक्ट पिन पॉइंट करके सिवाय तबूक के और किसी वक्त भी ऐसे नहीं बताया गया, फलां मुनाफिक एक लिस्ट दे दी जाती, जब वही उतर ही रही थी तो एक लिस्ट दे दी जाती, ये मुनाफिक है, बस इनके साथ ना आपने बात करनी है ना कुछ है, लेकिन उसमें उनकी रुसवाई होती, कभी वापस ना पलटते फिर। या तो उनको ढीठ करना नहीं था, जब फिंगर पॉइंटिंग होती है तो लोग ढीठ हो जाते हैं, तो जब भी बात करनी हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी क्या था, डायरेक्ट किसी को पिन पॉइंट नहीं करते थे, तुम फलाने, तुम ऐसे, तुम ऐसे, तुम ऐसे, बल्कि जब किसी को कोई चीज देते थे तो कहते थे लोगों को क्या हो गया है कि वो ऐसे करते हैं। वो भी हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा यही नहीं होता था, लोग ये करते हैं, लोग ये करते हैं, लोग ये करते हैं। आजकल तो हमारे ज्यादातर जो जो भी लोग लेक्चर्स देते हैं, दर्स देते हैं, बस हर वक्त लोगों की बैशिंग, लोग ऐसे करते हैं, लोग ऐसे करते हैं, लोग ऐसे करते हैं, लोग ऐसे। ओ भाई, इस तरह कहने से क्या लोग ढीठ नहीं हो जाएंगे, हर वक्त की नहीं, हाँ कभी कभार की बात अलग है, हर वक्त यही मौजू बनाए रखना ये भी कोई अच्छी बात नहीं होती, पॉजिटिव तरह से बात करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने एक ऐसे ग्रोह का जिक्र किया और फरमाया लोगों में से कोई एक ऐसा है जो कहता है, क्या कहता है, आमन्ना, हम ईमान लाए, उसको तो कहना चाहिए मैं ईमान लाया, वो तो यकूलू है ना, यकूलून तो नहीं है, बहुत सारे तो नहीं, एक बंदे की बात हो रही है कि लोगों में से कोई एक ऐसा है जो कहता है आमन्ना, हम ईमान लाए, क्यों ऐसा क्यों कहता है, वो ब्लेंड इन होना चाहता है ना कि हम सभी ईमान लाए, मैं भी सबके साथ ही हूं, जैसे बाकी ईमान लाए वैसे ही मैं भी ईमान ला रहा हूं, लोग मुझे ना इनसे बाहर ना समझे ईमान वालों से, और वह बिल यौमिल आखिर, और आखिरत पर भी हम ईमान लाए। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फैसला दे दिया, फिर ईमान लाए, लेकिन जब वो किसी जगह फॉर्म फिल करने जाएगा तो क्या लिखेगा, रिलीजन में क्या लिखेगा, इस्लाम। अल्लाह ताला ने फरमाया वमा हुम बिमुमिनीन, वो ईमान वाले नहीं है। ये नहीं फरमाया वमा हुम बिमुस्लिमीन, वो मुस्लिम नहीं है। क्यों? मुस्लिम जो होता है इंसान, इस मुसलमान कैसे बनता है? शहादा लेके, कलमा शहादत पढ़ के इंसान मुसलमान होता है। लेकिन ईमान क्या होता है? ईमान तो दिल में होता है, ईमान तो दिल की हालत है। इंसान कलमा पढ़ के मुसलमान तो हो सकता है, लेकिन उसका दिल ईमान वाला है या नहीं, ये कोई इस चीज की गारंटी नहीं। अगर कलमा पढ़ लिया तो दिल भी ईमान वाला हो गया, मोमिन हो गए, समझ आई? ईमान अलग है, इस्लाम अलग है। इस्लाम जाहिर में है, ईमान अंदर है। तो अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया मा हम भी मुस्लिमीन, क्योंकि वो तो शहादा ले चुके, नमाज भी पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, जकात देते हैं, ये सब काम करते हैं, तो कहा नहीं जा सकता इनको कि मुस्लिम ही नहीं है। कलमा पढ़ लिया, मुस्लिम हो गए। लेकिन अल्लाह ने कयामत के दिन इससे फैसला नहीं करना कि किसने शहादा ली थी, किसने कलमा पढ़ा था। अल्लाह ने फैसला इस बेस पर करना है कि किसके अंदर ईमान था। हम बोलते हैं ना अंदर ईमान, अंदर ईमान है कि नहीं। हम ये नहीं कभी कहते आपके बाहर ईमान है कि नहीं, कभी नहीं ये कहते। अपने आप के लिए भी कहते हैं ना मेरे अंदर ईमान है, तो हम सबको पता है, लाशौरी तौर पर भी नहीं भी बताया जाए, हम सबको पता है ईमान अंदर होता है। उससे फिर जो फ्रूट्स निकलते हैं, उससे जो नतीजे निकलते हैं, वो अमल की सूरत में बाहर जाहिर होने लगते हैं। जाहिर है, देखिए ना, आप मसला ने किसी जगह पे कुछ कुछ पक रहा है तो उसकी खुशबू बाहर तक आती है ना। तो इसी तरह जब ईमान अंदर होता है तो उसकी खुशबू आती है बाहर तक, अमल में पता चलता है कि जी ईमान है इसके पास। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वमा हुम बिमुमिनीन, वो ईमान वाले नहीं है। मुस्लिम हो तो होते फिर हैं, लेकिन ईमान वाले नहीं। और अल्लाह को ईमान चाहिए आपसे, सिर्फ इस्लाम नहीं चाहिए और इस्लाम के दावे नहीं चाहिए। अब ऐसा बंदा किसी जगह पे भी जाएगा क्या कहलाएगा? मुसलमान, मुसलमान कहलाएगा ना। दुनियावी तौर पे तो वो मुसलमान ही है, लेकिन अल्लाह ताला ने यहां बता दिया कि अल्लाह ताला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुसलमान कहलाते हो या नहीं कहलाते। अल्लाह ताला के लिए क्या चीज है कि ईमान तुम्हारे अंदर है या नहीं। उसने लोगों की बातों से फैसले नहीं करने। हम अपने नाम रख लें, फातिमा रख लें, हम साइमा रख लें, हम कोई मुसलमान खदीजा नाम रख लें, जैनब, इससे नहीं कोई फर्क पड़ता। बात यह हमारा ईमान क्या है, क्योंकि यही चीज है जो सबसे डरा देने वाली है यहाँ पर, कि ये साफ सामने थोड़ी नजर आता है। सामने क्या चीजें नजर आ रही? नाम नजर आ रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ हाँ मेरा अल्लाह के ऊपर ईमान है, हाँ मेरा आखरत पे ईमान है, हम तो यही देखेंगे ना। और इसी से हम अपने आप को भी धोखा देते हैं कि हाँ ठीक है मैंने ये कह दिया तो मैं तो मुसलमान ही हूँ, और मुसलमान तो सीधा सीधा जन्नती है। अल्लाह ताला ने तो रिजेक्ट कर दिया इस ईमान को। हाँ हम भी मोमिनीन, बी मोमिनीन आ गया तो मतलब क्या है? बिल्कुल भी नहीं है मोमिन, जरा सा भी नहीं इनके अंदर ईमान, कोई ईमान नहीं है, इनका ईमान से कोई वास्ता नहीं है। मा हुम भी मोमिनीन, ठीक। तो इससे हमें अच्छी तरह ये बात समझ आ जानी चाहिए कि जुबानी दावों की अल्लाह के नजदीक कोई अहमियत नहीं है, कि हम जुबान से दावे करते रहे हाँ हम तो अल्लाह की खातिर ये कर देंगे, हाँ तो हम अल्लाह की खातिर जान भी देने को तैयार है, हाँ हम अल्लाह की खातिर ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अल्लाह की खातिर ये काम कर रही हूं ना, बोलने से क्या है? बोलने को तो कोई कुछ भी कह दे, अल्लाह को तुम्हारी बातों से नहीं कोई दिलचस्पी ना, उसने तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारी बातों के मुताबिक करना। ये तो इंसानों को तो आप कह के इससे खुश कर सकते हो, या इंसानों को ये बातें कह के उनको राजी कर सकते हो, अल्लाह तो दिल देखता है, वो तो दिलों के अंदर जानता है इनमें ईमान कितना, दिलों के भेद जानता है, बिदात सुदूर दिल के अंदर की बातें उनको भी जानता है। उसको कैसे कोई ये कह के धोखा दे सकता है कि मैं ईमान लाए, मैं ईमान लाया और अंदर ईमान ना हो, जब वो दावा कर रहे हैं ईमान का और अल्लाह ताला रिजेक्ट कर रहा है उनके ईमान को। अब हम कहे हाय वो बेचारे तो कह रहे हैं हम ईमान लेकर आए, इसलिए कि वो जुबान से कह रहे हैं, दिल में नहीं है, ठीक है ना।